नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रोमांच। तो चलिए कहानी को शुरू करें। रोमांच। वो जब मंदिर पहुंचा तो शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। अंदर मंदिर के हॉल में पंडित जी एक हाथ में घंटी बजाते हुए और दूसरे हाथ में आरती की थाली लेकर घुमाते हुए भगवान की मूर्ति के सामने खड़े आरती गा रहे थे। उसी हॉल में खड़े औरत, मर्द और बुजुर्ग ताली बजाते हुए अपने सिर झुमाते हुए पंडित के सुर में सुर मिलने की नाकाम कोशिश करते हुए आरती दोहरा रहे थे। कुछ औरतें आरती गाते गाते इधर उधर भागे रहे बच्चों को पकड़ने में लगी थी और जिन्हें पंडित जी भी आरती गाते गाते दांत पीसते हुए घूरते हुए अपने गुस्सैल नज़रों से काबू करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अभी भी मंदिर आ रहे थे और जल्दबाजी में अपने चप्पलें, जूते, सैंडल हॉल के बाहर एक ढेर में उतार कर हॉल में दाखिल हो रहे थे। वो भी इसी ढेर के नज़दीक खड़ा कुछ देर को अंदर हॉल में झांकता रहा और फिर अपनी घिसी हुई पुरानी चप्पलें उसी ढेर में उतार कर हॉल की तरफ बढ़ा। कदम अंदर रखने से पहले उसने हॉल की दहलीज को झुककर दाएं हाथ से छूकर माथे से लगाया और दहलीज पर एक जंजीर से लटके घंटे को बजाते हुए हॉल में दाखिल हुआ और सबसे पीछे दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद खड़े होकर झूम झूम कर आरती गाने लगा। कुछ देर को यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आंखें खोली और लोगों के बीच से जगह बनाते हुए मूर्ति की ओर बढ़ा। जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला, उसे वहीं रखे एक दान पात्र में डाला, मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और हॉल से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने चप्पलें पहनी और जितनी जल्दी हो सके मंदिर के बाहर खड़ी अपनी तीनों पहियों वाली रिक्शा डेढ़ी पे सवार होकर निकल गया। शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट भागते मोटर साइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और सवारी रिक्शाओं को पछाड़ता हुआ एक अंधेरी गली में उसने अपनी रिक्शा रेडी घुसाई और एक पुराने से घर के आगे जाकर रोक दी। रिक्शा रेडी से उतरकर उसने उस पुराने घर के जंग लगे साकल पर जड़े ताले को खोलकर दरवाज़ा धकेल कर खोला, फिर से रेडी के पास आया। रेडी में रखा एक प्लास्टिक का बोरा उठाया, कंधे पर लादा और घर के अंदर घुसकर वापस से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये घर जो कहने को घर था पर असल में महज एक कमरा ही था। उसी अंधेरे कमरे में बिजली का बटन को टटोलते हुए उसने बटन दबाया और ऐसा करते ही पीले बल्ब की रोशनी का उदास सा उजाला कमरे में फैल गया। बोरे को उसने एक कोने में पटका और दूसरे कोने में पड़े मटके से एक लुटिया में पानी लिया और गट गट करके पीने लगा। उसके पानी पीने के साथ ही उसके हलक का गोला ऊपर नीचे हिल रहा था। पानी पीने के बाद उसने एक लंबी सांस ली, चप्पल उतारी और वही पास में बिछी खटिया पर धम से पसर गया। कुछ देर तक लेटे लेटे वो जाले लगी कमरे की छत को टकटकी बांधे देखता रहा और फिर उठ के बैठ गया। जरा आगे झुकते हुए उसने नीचे पड़ी चप्पलें हाथ में ली और ध्यान से देखने लगा। नाप में उसके पैरों से बड़ी नीले सफ़ेद रंग की ये चप्पलें ज़्यादा पहनी हुई नहीं थी। उस पर लगा मार्के का स्टीकर पहनने वाले ने अभी तक उतारा नहीं था। यह देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो ये सोचने लगा कि कैसे कोई नई नई चप्पलें पहनकर मंदिर आ सकता है। शायद वो शख्स ये सोचकर कि जब ऊपर वाला सब देखता है तो उसकी चप्पलों की निगरानी का जिम्मा भी तो उसका ही होगा। अगर ये सच है तो क्या ऊपर वाला दुनिया के और दुख दर्द तकलीफ़ों से इतना फारिग हो गया है उसके लिए सिर्फ किसी की चप्पलों की निगरानी करना ही बचा है? तो क्या दुनिया में तभी इतनी परेशानियां हैं कि ऊपर वाले को लोगों की चप्पलों का ध्यान रखने से ही फुर्सत नहीं? मगर ऐसा होता तो ऊपर वाला उसकी मदद क्यों करता? बस ये सोचता सोचता वो उठा, कोने में रखे बोरे को उठाया और उसे फर्श पर पलट दिया। उसके ऐसा करते कोई 10-12 नए पुरानी चप्पलों के जोड़ों का एक ढेर फर्श पर बिखर गया। ये सारे जोड़े अब उसने आज अलग अलग मंदिरों से बिना किसी की नज़रों में आए उठाए थे। फिर तो उसके मुताबिक ऊपर वाले ने मदद तो उसी की थी, और फिर हर मंदिर में उसने दान पात्र में चढ़ावा भी तो चढ़ाया था, उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा। और वैसे भी वो अपना काम भी तो पूरी ईमानदारी से करता है। अगर वो एक नया जोड़ा उठाता है तो एक पुराना छोड़ के भी तो आता है। वो ये सब सोचता हुआ सारी चप्पलों को जोड़ों में लगा रहा था। वो इन चप्पलों के जोड़ों को गंदे नाले की पुलिया पर अपने उसी रेहड़ी में बेचा करता था। नाले के दूसरी तरफ कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग ही उसके ग्राहक थे, जिनमें से ज़्यादातर मजदूर तबके के थे, जो काम पे जाते वक्त उससे सस्ती चप्पलें खरीद लेते थे। वो इन चप्पलों के दाम चप्पलों के इस्तेमाल के मुताबिक ही लगाता था, यानी जो जितनी पुरानी दाम उतना कम और जितनी नई दाम उतना ज़्यादा, लेकिन बाज़ार से फिर भी काफ़ी कम। इसलिए उसके ग्राहक भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही खरीदारी किया करते थे। इन चप्पलों को बेचकर उसकी जो भी आमदनी होती थी उससे उसका गुजारा इतना चल जाता था कि वो अपना इकलौता पेट भर ही लेता था। लेकिन जीने के लिए महज पेट ही भरना काफ़ी होता तो फिर क्या ही बात थी। अगर इंसानी बदन के दो हिस्सों में बांटे तो पेट की बारी दिमाग के बाद आती है, और दुनिया में सारे खेल ही इन दोनों के हैं। जब पेट खाली होता है तो दिमाग उसे भरने की जरूरत लगाने लगता है, और जब पेट भर जाता है तो खाली दिमाग परेशान करने लगता है। इसी झंझट में वो भी अटका था। वो चाहता तो कोई और काम भी कर सकता था, जैसे कि कच्ची बस्ती वाले मजदूर करते थे, लेकिन मजदूरी में वो रोमांच कहाँ जो उसे चप्पलें उठाने में मिलता था। मजदूरी करने में तो सिर्फ एक मजबूत चुस्त बदन ही तो पसीना बन के खपता है, लेकिन इस काम में बदन की चुस्ती के साथ साथ दिमाग की फुर्ती भी तो बराबर लगती है। सुबह शाम अलग अलग मंदिरों में जाकर आसपास के माहौल का पूरा जायजा लेकर सही मौके की ताक में चप्पलों के ढेर पर निगाहें गढ़ाकर जब पूरा इत्मीनान हो जाए तो दान पात्र में चढ़ावा डालकर और एक पुराना चप्पलों का जोड़ा उसी ढेर में छोड़ने के बाद एक जोड़ा उठाने को मिलता था। और ये सब हो जाने के बाद किसी की नज़रों में आने से पहले ही वहाँ से निकल जाना, दिमाग की फुर्ती और बदन की चुस्ती दोनों अगर मिल के काम ना करे तो कैसे काम चले, और उस पर जोखिम अलग। लेकिन इसी जोखिम में तो असली रोमांच छुपा था, और इसी रोमांच को हर बार पाने की तलब ही उससे चप्पलें उठवाती रही। लेकिन धीरे धीरे उसे इस रोमांच की खुराक में कमी आती दिख रही थी, और शहर के ज़्यादातर बड़े मंदिरों से वो चप्पलें भी उठा चुका था। और अब कुछ मंदिरों में चप्पलों के ढेर के पास या तो एक चौकीदार बैठा रहता था, या फिर कुछ मंदिरों में टोकन लेकर लोग अपनी चप्पलें एक कमरे में रखवाने लगे थे, और वापसी में वही टोकन जमा कर उन्हें चप्पलें मिल जाया करती थी। इतनी मुस्तैदी एक मतलब ये था कि या तो ऊपर वाले ने मंदिर में आने वालों की चप्पलों की निगरानी से पल्ला झाड़ लिया था, या फिर लोगों के भरोसे में कमी आ गई थी, या फिर ऊपर वाला भी ये चाहता है कि बड़े मंदिरों को छोड़ उसे अब छोटे मंदिरों में रोमांच तलाशना चाहिए। और फिर मर्दाना चप्पलें उठाने में इतना जोखिम भी कहाँ बचा था। बस एक पुराना चप्पलों का जोड़ा मंदिर पहनकर जाना, मौका देकर उसे वहीं उतार कर दूसरी चप्पलें पहन लेना। ये सब बार बार दोहराते वो इस काम में इतना माहिर हो गया था कि उसे अब इस सबसे ज़्यादा रोमांच भी नहीं आता था। लेकिन उसने आज तक किसी जनाना चप्पल या सैंडल को उठाया नहीं था। ऐसा करने उसके लिए एक नया तजुर्बा होता और नया रोमांच भी। बस अब एक नए रोमांच को तलाशता वो अब गली मोहल्ले के छोटे मंदिरों के चक्कर काटने लगा, जहाँ कोई चौकीदार भी ना रहता था और ना औरतें भी ज़्यादा आती थी। इस तरह से कुछ ही दिनों में उसने कई सारी जनाना चप्पलें सैंडल समेट लिए, और फिर आई बारी उन्हें बेचने की। 100 दफ़ा इस दफ़ा उसने अपनी रेहड़ी पुलिया पर लगाने की बजाय पुलिया पार कच्ची बस्ती में एक पेड़ के नीचे लगा दी। वहाँ से गुजरती औरतें भी वहीं रुककर उसकी रेहड़ी में रखा अपने मतलब का सामान भले इस्तेमाल किया हुआ हो सही, पर इतने कम दामों में बिकता देख ललचा जाती और ख़रीद लेती। बस देखते ही देखते उसकी दुकानदारी भी अच्छी खासी जम गई, और आमदनी भी पहले से ज़्यादा बढ़िया होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसकी रेहड़ी पर दो लड़कियां आकर रुकी और कई देर वहां रखी रंग बिरंगी चप्पलें सैंडलों को उलट पलट कर देखती रही। उनमें से एक को एक सैंडल का जोड़ा बहुत लुभाया। वो उसे काफ़ी देर उलट पलट के देखती रही। उसने इस जोड़े को एक बार पहन के भी देखा जो एकदम उसके पैरों के नाप का निकला। उस लड़की ने उस सैंडल का दाम पूछा और फिर वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में वो वापस लौट कर आई और अपने साथ तीन चार औरतों को भी ले आई। ये देख कर कि वो लड़की अपने साथ और ग्राहकों को भी लेकर आई है उसे बड़ी खुशी हुई। उन सब ने आते ही उसकी रेहड़ी को घेर लिया और वो लड़की उस सैंडल के जोड़े को हाथ में लेके बारी बारी सबको दिखाने लगी और वो औरतें भी बारी बारी उस सैंडल को देखने लगी। ये सब देख कर उसे बड़ा अजीब लगा। महज एक सैंडल की जोड़ी और वो सब इस तरह से देख पर रख रही थी कि जैसे कि कोई सैंडल नहीं बल्कि किसी ज़मीन का सौदा करने आई हूँ। फिर वो ये पूछने लगी कि उसे ये जोड़ी मिली कहाँ से। ये सुनते ही उसे ध्यान आया कि ये जोड़ा तो उसने कुछ रोज पहले ही एक मंदिर से उठाया था और हो ना हो ये सैंडल पक्का उस लड़की के ही थे जिसे वह उस रोज़ पहन के मंदिर गई थी। इससे पहले कोई और तमाशा खड़ा होता उसने बिना कुछ कहे उन सब के सामने हाथ जोड़े और वो जोड़ी उन्हें रखने के लिए और उसे जाने देने के लिए कहा और वो सब मान भी गई। लेकिन सिर्फ एक जोड़ी लेके नहीं बल्कि बाकी सब चप्पलें सैंडल लेकर उसने उस प्लास्टिक के बोरे में जितने वो सारा सामान रखता था सारी चप्पलें सारी सैंडलें डाले और उन औरतों को थमा के अपनी रेहड़ी लेके वो वहाँ से निकला तो सीधा अपने घर आकर ही रुका। उसने गजब की फुर्ती से दरवाजे पर लगा ताला खोला अंदर घुस के वापस दरवाज़ा बंद किया और तीन लुटिया पानी पीकर धड़कते दिल से खटिया पर थम से पसर गया। जाले लगी छत को वो कई देर तक देखता रहा फिर एकदम से उसके चेहरे पर ये सोच के एक मुस्कान सी उभर आई कि चाहे जो भी हुआ पर उसमें रोमांच तो बड़ा था। फिर वो उठा और एक प्लास्टिक का बोरा उठाया घर से बाहर निकला दरवाजे पर ताला जड़ा और अपनी रिक्शा रेहड़ी पर सवार होके एक नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ा। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।